ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। महादेव की पूजा आराधना कर मनाई जा रही हरितालिका तीज, द्वंद्वकालीन घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने की प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने जताई प्रतिबद्धता। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में सहभागी होने वाली टोली की भ्रमण तालिका मंत्रिपरिषद द्वारा हुई स्वीकृत। और केन्या के एक बोर्डिंग स्कूल में हुई आगलगी में कम से कम 17 बच्चों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। हरितालिका तीज आज देवाधिदेव महादेव की पूजा आराधना कर मनाई जा रही है। तीज पर्व के अवसर पर पशुपतिनाथ लगायत मंदिरों और देशभर के शिवालयों में दर्शन पूजा करने वाले भक्तों का आज सुबह से ही अच्छी खासी भीड़ लगी रही। तीज के अवसर पर पशुपतिनाथ मंदिर में अब तक करीब 3 लाख से ऊपर भक्तजनों ने दर्शन और पूजा की, ये जानकारी पशुपति विकास कोष ने दी। इसी तरह मिथिला समेत तराई मधेश के जिलों में नियम निष्ठा के साथ चौलचन यानी चौटचंद्र पर्व मनाया गया। परिवार के कल्याण, सुख शांति और समृद्धि की कामना के साथ हर साल भाद्र शुक्ल चतुर्थी की शाम को चंद्रमा को विधिवत पकवान अर्पित करते हुए चौटचंद्र मनाया जाता है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि पुनः स्थापित शांति प्रक्रिया को दीर्घकालीन बनाते हुए द्वंद्वकालीन घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने को लेकर वर्तमान सरकार स्पष्ट है। संक्रमणकालीन न्याय से संबंधित विषय में नेपाल समाजवादी पार्टी के संयोजक डॉ बाबूराम भट्टराई के नेतृत्व वाले प्रमंडल का 19 सूत्रीय ध्यानाकर्षण पत्र लेते हुए प्रधानमंत्री ओली ने ये बात कही। आज प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सिंह दरबार में ध्यानाकर्षण पत्र लेते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि नेपाली जनता को जातीय आधार पर विभाजित करके और सामाजिक रूप में घृणा द्वेष फैलाकर राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने का प्रयास सफल नहीं होगा। मौके पर संयोजक डॉ भट्टाराई ने कहा, 2 बड़े दलों की सरकार है, इसलिए संक्रमणकालीन न्याय का निराकरण करने का बढ़िया अवसर है और इस काम में हमारा साथ रहेगा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि विपन्न विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति अनुदान रकम विद्यार्थियों को मिली या नहीं, सरकार इसका अनुगमन करेगी। आज फेसबुक के माध्यम से प्रधानमंत्री ओली ने कहा है कि सभी स्थानीय तहों में इस विषय में अनुगमन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सामुदायिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 10वीं तक के विपन्न विद्यार्थियों के लिए वार्षिक 18,000 रूपये और विज्ञान विषय अध्ययन के लिए वार्षिक 24,000 रूपये अनुदान देने के लिए सरकार 60 करोड़ रूपये का बजट दे रही है। प्रधानमंत्री ने दुर्गम लगायत अन्य प्रकार की छात्रवृत्तियों का जिक्र करते हुए कहा कि इन सब के लिए 50 करोड़ रूपये विनियोजित हुए हैं। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राष्ट्र संघ की 79वीं महासभा में भाग लेने के लिए अश्विन 4 गते को न्यूयॉर्क जाएंगे। मंत्रिपरिषद की कल की बैठक के निर्णयों को साझा करने के लिए आज सिंह दरबार में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने ये बात कही। उन्होंने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित होने जा रही संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में सहभागी होने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल गठित करने का निर्णय मंत्रिपरिषद ने किया है। प्रधानमंत्री ओली के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल को महासभा में सहभागी होने के लिए आगामी अश्विन 4 गते भेजने के हिसाब से भ्रमण कार्यतालिका को बैठक ने स्वीकृत भी कर लिया है। इसके अलावा कई अन्य निर्णय भी मंत्रिपरिषद की बैठक ने किए, जिनमें नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरण सेक्शन की राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी के सचिव पद पर गोविंद बहादुर कार्की को पदोन्नत कर बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में स्थापित करने, रेडियो नेपाल के रिक्त कार्यकारी निदेशक पद पर अमर ध्वज लामा को और नेपाल दूरसंचार कंपनी लिमिटेड के रिक्त प्रबंध निदेशक पद पर संगीता पहाड़ी को नियुक्त करने लगायत निर्णय शामिल हैं। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल ने मौजूदा केंद्रीय कार्य समिति को केंद्रीय महाधिवेशन तैयारी मूल समिति में परिणत किया है। इसी भाद्र 19 और 20 गते को काठमांडू में हुई केंद्रीय पदाधिकारी बैठक ने आगामी वैशाख 26 गते केंद्रीय महाधिवेशन आयोजित करने और इसके लिए कार्तिक मासांत तक में सदस्यता अभियान संपन्न करने का निर्णय किया था। बैठक में संविधान संशोधन के लिए विगत में उठाए गए मधेश के सभी मुद्दों को संकलित करते हुए मधेशी, थारू और अन्य उत्पीड़ित जनता के अधिकारों को कायम करवाने के लिए सभी दलों के साथ सहकार्य के लिए अपील करने का निर्णय किया, ये बात अध्यक्ष महंत ठाकुर ने बताई। इस तरह बैठक ने संविधान संशोधन का एजेंडा तय करने के लिए वरिष्ठ नेता लक्ष्मण लाल कर्ण के संयोजकत्व में दान बहादुर विश्वकर्मा और परमेश्वर शाह की सदस्यता में 3 सदस्यीय कार्यदल बनाने का निर्णय भी किया है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर्जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नोजी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार।
अब बाकी समाचार। बागलों की बांद्रे नदी में आई बाढ़ में बहकर मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। बाढ़ में बहकर लापता रहे बागलों नगर पालिका वार्ड नंबर 4 बांद्रे अढ़ाई थर के 20 वर्षीय कमल सापकोटा का शव घटनास्थल से 500 मीटर दूर पाया गया। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय बागलों ने दी। बीती रात 12 बजे आई बाढ़ उसी वार्ड के कुंडले से मलिका जाती हुई एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटर को बहा ले गई। इस हादसे में मारे गए बांद्रे अढ़ाई थर के 23 वर्षीय अर्जुन सापकोटा और 22 वर्षीय अभिषेक रेग्मी के शव रात को ही घटनास्थल से 200 मीटर दूर बरामद हुए थे। बर्दिया राष्ट्रीय निकुंज के मध्यवर्ती क्षेत्र में पड़ने वाले डल्ला सामुदायिक जंगल में गैंडे के हमले से एक टूरिस्ट गाइड की मौत हो गई, वहीं विदेशी पर्यटक समेत 2 लोग घायल हो गए। मधुबन नगरपालिका वार्ड नंबर 1 स्थित जंगल में वन्य जंतु अवलोकन के दौरान आज सुबह एक सिंह वाले गैंडे ने हमला कर दिया था। गैंडे के हमले से ठाकुरबाबा नगरपालिका वार्ड नंबर 9 के अनुमानित 35 वर्षीय नेचर गाइड मनमोहन चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई। ये जानकारी मधुबन नगरपालिका वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष मीन थापा ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। केन्या के प्राथमिक बोर्डिंग स्कूल में लगी भीषण आग की चपेट में आकर 17 बच्चों की मौत हो गई जबकि 13 घायल हो गए। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। घटना गुरुवार देर रात की है। नियेरी स्थित एंडरासा एकेडमी हॉस्टल में 14 साल तक के बच्चों को रखा जाता है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि यहां 150 छात्र रह रहे थे। यहां अधिकांश मकान लकड़ी से बने हैं। यही कारण है कि आग तेजी से फैल गई। राष्ट्रपति विलियम रूटो ने घटना को भयावह बताया है। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को घटना की व्यापक जांच के आदेश दिए गए हैं। दुनिया भर के कई देशों के सेंट्रल बैंक बड़ी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं। इनमें भारतीय रिजर्व बैंक भी शामिल हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताजा रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ जुलाई महीने में ही केंद्रीय बैंकों की खरीदारी 37 टन है। सोना खरीदने वाले देशों में पोलैंड, तुर्की, उज्बेकिस्तान और चेक रिपब्लिक जैसे देश शामिल हैं। हालांकि सोने की इस ताबड़तोड़ खरीद के बीच कुछ देश ऐसे भी हैं जिनके केंद्रीय बैंक सोना बेच रहे हैं। ये ऐसे समय हो रहा है जब रूस यूक्रेन युद्ध, गजा इसराइल जंग और पर्यावरण संकट से दुनिया भर में चुनौतियां बढ़ी हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के हवाले से बीबीसी ने बताया कि इस साल की दूसरी तिमाही यानी अप्रैल से जून के दौरान भारत सोना खरीदने में दूसरे नंबर पर रहा। पोलैंड का सेंट्रल बैंक सबसे अधिक 18.68 टन गोल्ड खरीद के साथ पहले स्थान पर रहा जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने इस दौरान यानी अप्रैल से लेकर जून तक की तिमाही में 18.67 टन सोना खरीदा। वहीं तुर्की ने इस दौरान 14.63 टन, उज्बेकिस्तान ने 7.46 टन और चेक रिपब्लिक ने 5.91 टन सोना खरीदा है। इस साल की दूसरी तिमाही में दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने 183 टन सोना खरीदा जबकि सन 2023 में इसी अवधि के दौरान 173.6 टन सोना खरीदा गया था। इस साल की दूसरी तिमाही यानी अप्रैल से जून में कजाखस्तान ने 11.83 टन सोना बेचा है। वहीं सिंगापुर ने 7.7 टन जबकि जर्मनी ने 780 किलोग्राम सोना बेचा। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महादेव की पूजा आराधना कर मनाई जा रही है हरितालिका तीज। द्वंद्वकालीन घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने की प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने जताई प्रतिबद्धता। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में सहभागी होने वाली टोली की भ्रमण तालिका मंत्रिपरिषद द्वारा हुई स्वीकृत। और केन्या के एक बोर्डिंग स्कूल में हुई आग लगी में कम से कम 17 बच्चों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।